ज़करिया अध्याय 11। ज़करिया अध्याय 11 और 12 बड़े ही मनमोहक है। धर्मशास्त्र का ये भाग में अंतिम समय में होने वाली घटनाओं से संबंधित है। कुछ भविष्यवाणियां तो पूरी होना आरंभ हो गई है और शेष भविष्यवाणियां अति शीघ्र ही पूरी हो जाएंगी। परमेश्वर मुझे कम बोलने का वरदान दे। इससे पूर्व कि हम अंतिम दिनों की घटनाओं के बारे में देखें, अध्याय 11 में हम देखते हैं कि यीशु के प्रथम आगमन का, उसके परित्याग किए जाने का तथा चांदी के 30 सिक्कों में उसे बेचे जाने का स्पष्ट उल्लेख है। यीशु ने कहा, यूहन्ना अध्याय 5 पद 43, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई और अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। ज़करिया भी अध्याय 11 में कहता है कि सच्चा चरवाहा आया तो उसका परित्याग किया गया और झूठा चरवाहा आएगा तो उसे स्वीकार किया जाएगा, वरन उसका अनुसरण भी किया जाएगा। अध्याय 11 सर्वप्रथम रोमी साम्राज्य द्वारा यहूदियों की सरकार के विनाश की भविष्यवाणी देता है। रोमियों को उत्तर दिशा से आक्रमण करना था और वे यथार्थ में लेबनान से प्रवेश कर दक्षिण में यरूशलेम तक चले गए। उन्होंने यरूशलेम को घेरा और उसको तहस नहस किया। उन्होंने मंदिर को ध्वस्त किया तथा 10,00,000 से अधिक यहूदियों को मंदिर में भस्म कर दिया। ज़करिया इस उत्तरी दिशा से होने वाले आक्रमण से आरंभ करता है। ज़करिया अध्याय 11 पद 1 से लेकर 3 तक, हे लेबनान, आग को रास्ता दे कि वो आकर तेरे देवदारों को भस्म करें। हे सनोबरों, हाय हाय करो, क्योंकि देवदार गिर गया है और बड़े से बड़े वृक्ष नाश हो गए हैं। हे बाशान के बांज वृक्षों, हाय हाय करो, क्योंकि अगम्य वन काटा गया है। चरवाहों के हाहाकार का शब्द हो रहा है, क्योंकि उनका विभाव नाश हो गया है। ये चरवाहे वे हैं जो यरूशलेम में शासन कर रहे थे, अर्थात यहूदियों के शासक। ज़करिया अध्याय 11 पद 3 से लेकर 5 तक, जवान सिमों का गरजना सुनाई देता है, क्योंकि यर्दन के तीर का घना वन नाश किया गया है। मेरे परमेश्वर यहोवा ने ये आज्ञा दी, घात होने वाली भेड़ बकरियों का चरवाहा हो जा, उनके मोल लेने वाले उन्हें घात करने पर भी अपने को दोषी नहीं जानते। ये शासक जनता का शोषण कर रहे थे, वे अपने दोष को स्वीकार नहीं करते थे, परंतु यहूदी जन समुदाय के शासक होने के अपने उत्तरदायित्व की निंदा कर रहे थे। वे अपने पद का अनुचित लाभ उठाते हुए आत्मिक रूप से अपनी प्रजा को पीड़ा पहुंचा रहे थे। वे धनोपार्जन में लगे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह के समय में याजक वर्ग पूरा भ्रष्ट हो चुका था। याजक वर्ग शासक था, उनके साथ शास्त्री और अन्य अगुवे शासन में सहभागी थे। रोमी राज्य के अधीन रहते हुए भी उनका शासक उनका महायाजक होता था, जो बहुत भ्रष्ट शासक था। प्रभु यीशु मसीह ने इनका खुलकर विरोध किया और परिणाम ये हुआ कि उन्होंने यीशु से बैर किया और उसे मार डालने का दृढ़ संकल्प किया। मत्ती 21 पद 12 से लेकर 13 तक, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों की पीड़ों और कबूतरों के बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। उन्होंने मंदिर परिसर में दुकानें लगा रखी थी, जिससे उन्हें बहुत लाभ होता था। वे मंदिर में चांदी के सिक्कों की अपेक्षा अन्य कोई मुद्रा स्वीकार नहीं करते थे। यदि आपने उस समय की रोमी सिक्का जो बाजार में चलता था भूल से दान में डाल दिया तो जान लो कि आप समस्या में पड़ गए। आपको इन सराफों से रोमी सिक्के मंदिर के चांदी के सिक्कों में बदलवाने होते थे। सराफ बहुत अधिक बट्टा काटकर मुद्राओं का विनियम करते थे, मनुष्य की इस इच्छा का लाभ उठाते थे, जिससे मन बसाए वो मंदिर में परमेश्वर के लिए दान की भेंट लाता था। यीशु के लिए ये घृणा की बात थी कि याजक लोग ऐसे काम को बढ़ावा दे रहे थे और स्वयं उन सराफों से अपनी दलाली लेकर धन एकत्रित कर रहे थे। कबूतर और मेमने बेचने का भी यही उद्देश्य था। यदि आप बाहर से खरीदते तो एक दमड़ी में दो कबूतर आपको मिल जाते थे, परंतु यदि आप बाहर से कबूतर ले आए तो याजक ढूंढ ढूंढ कर उसमें से दोष निकालता था और कहता था, तुम ये कबूतर परमेश्वर को नहीं चढ़ा सकते क्योंकि इसमें ये दोष है या वो दोष है आदि। इस प्रकार आपको मजबूर होकर मंदिर के बाजार से ही कबूतर खरीदना होता था, जिसकी कीमत लगभग 235 रुपए होती थी। उन कबूतरों पर चिन्ह अंकित होता था, जिससे याजक जान लेता था कि ये कबूतर उन्हीं के दुकानों से खरीदे गए हैं। यहां भी जन सामान्य की धार्मिक श्रद्धा का अनुचित लाभ उठाया जा रहा था। परमेश्वर ऐसी बातों से घृणा करता है। परमेश्वर उस प्रत्येक जन की सहायता करे जो परमेश्वर को जानने और उसके साथ सहभागिता रखने की मनुष्य की मनोकामना का अनुचित लाभ उठाता है और दलाली करता है। यीशु उस समय ही नहीं, आज भी इन बातों से क्रोधित होता है। आज भी वो सहन नहीं करता है कि कोई मनुष्य की धार्मिकता का अनुचित लाभ उठाए। यहोवा इन चरवाहों के लिए ही कह रहा था कि वे उन्हें घात करने पर भी अपने को दोषी नहीं मानते। जकरिया अध्याय 11 पद 5 और 6। और उनके बेचने वाले कहते हैं, यहोवा धन्य है, हम धनी हो गए हैं, और उनके चरवाहे उन पर कुछ दया नहीं करते। यहोवा की यही वाणी है, मैं इस देश के रहने वालों पर फिर दया ना करूंगा। देखो, मैं मनुष्यों को एक दूसरे के हाथ में और उनके राजा के हाथ में पकड़वा दूंगा, और वे इस देश को नाश करेंगे, और मैं उसके रहने वालों को उनके वश से ना छुड़ाऊंगा। इस भविष्यवाणी का अर्थ यह है कि रोमी सेना आएगी और इसराइल की सरकार का तख्ता पलट देगी। इसराइल अपनी मातृभूमि से निकाल दिया जाएगा और परमेश्वर दया नहीं करेगा। रोमी सेना उसके न्याय का साधन होगी। तब यहोवा ने कहा, जकरिया अध्याय 11 पद 7, सो मैं घात होने वाली भेड़ बकरियों को और विशेष करके उनमें से जो दीन थी उनको चराने लगा, और मैंने दो लाठियां ली, एक का नाम मैंने अनुग्रह रखा और दूसरी का नाम एकता। इनको लिए हुए मैं उन भेड़ बकरियों को चराने लगा। यहोवा कहता है, मैं इन मक्कार चरवाहों को नाश करूंगा और अपनी भेड़ बकरियों को स्वयं चराऊंगा, और उसने अनुग्रह और एकता दो लाठियां उठा ली। अब यहोवा कहता है, जकरिया अध्याय 11 पद 8, और मैंने उनके तीनों चरवाहों को एक महीने में नाश कर दिया। तीनों चरवाहे निश्चय ही भविष्यद्वक्ता, याजक और शासक थे, और मैंने उनके तीनों चरवाहों को एक महीने में नाश कर दिया। जकरिया अध्याय 11 पद 8 में आगे लिखा है, परंतु मैं उनके कारण अधीर था और वे मुझसे घृणा करती थी। वास्तव में अभिव्यक्ति इस प्रकार है, मैं उनसे घृणा करता था और वे मुझसे घृणा करते थे। परस्पर विरोधी स्वभाव। जकरिया अध्याय 11 पद 9 से लेकर 11 तक, तब मैंने उनसे कहा, मैं तुमको ना चराऊंगा, तुम में से जो मरे वो मरे, और जो नाश हो वो नाश हो, और जो बची रहे वे एक दूसरे का मांस खाएं। और मैंने अपनी वो लाठी तोड़ डाली जिसका नाम अनुग्रह था, और जो वाचा मैंने सब अन्य जातियों के साथ बांधी थी उसे तोड़ू, वो उसी दिन को तोड़ी गई, और इससे दीन भेड़ बकरियां जो मुझे ताकती थी उन्होंने जान लिया कि ये यहोवा का वचन है। अनुग्रह की लाठी यीशु था जो तोड़ा गया। यीशु के क्रूसीकरण पर यहोवा की वाचा जो उसने इसराइल से बांधी थी तोड़ी गई। पौलुस ने कहा, तुमने अपने आप को अनंत जीवन के योग्य ना जाना, इसलिए मैं अन्य जातियों में जाता हूं। यहोवा ने जानबूझकर इसराइल के अंधेपन को दूर नहीं किया, क्योंकि उसकी वाचा तोड़ दी गई थी, अनुग्रह की लाठी तोड़ी जा चुकी थी। व्यवस्था की वो वाचा जिसके द्वारा इसराइल परमेश्वर से संबंध रखता था तोड़ी गई। अब कोई भी व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता था। इसराइल को भी अब अन्यों के समान परमेश्वर के पास आना होगा। पौलुस रोमियो की कलीसिया से कहता है, अब कोई अंतर नहीं रहा, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वंचित हुए हैं। सबका न्याय विश्वास द्वारा होता है। इसराइल को भी मसीह में विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पास आना होगा। अब मूसा की व्यवस्था निष्क्रिय हो गई, क्योंकि उन्होंने यीशु को क्रूस पर तोड़ा है, अर्थात परमेश्वर की वाचा को तोड़ दिया है। यीशु के शब्दों पर ध्यान दीजिए, मती अध्याय 26 पद 28, ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। अब पुरानी वाचा जाती रही है, बलिदान और चढ़ावे सब व्यर्थ है। मसीह में विश्वास लेने वालों के लिए बाइबल कहती है, धनी को नहीं, कुलीन को नहीं, परंतु परमेश्वर ने संसार के दुर्बल जनों को अर्थात कंगालों को चुना है, और सुसमाचार कंगालों तक पहुंचाया गया था। जकरिया अध्याय 11 पद 12 और 13, तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तोल दिए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुमार के आगे फेंक दे, ये क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। तब मैंने चांदी के उन 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। यहूदा द्वारा यीशु के साथ विश्वासघात और 30 चांदी के सिक्कों में सौदा तय किए जाने की उल्लेखनीय भविष्यवाणी। सुसमाचार वृत्तांत में लिखा है कि यहूदा इस्करियोती महायाजक के पास गया और कहा कि यदि वो यीशु को उन्हें पकड़वा दे तो वो उसे क्या देगा। इस पर उनका सौदा चांदी के 30 सिक्कों में तय हुआ था। यहोवा ने तो पहले ही कह दिया था कि ऐसा होगा। कुछ लोगों का कहना है कि यहूदा इस्करियोती ने छल नहीं किया था। वो अपनी समझ के अनुसार यीशु को पकड़वाना चाहता था कि यीशु अपनी शक्ति का प्रयोग करके इसराइल के राज्य को अपने हाथों में ले ले और वो वित्त मंत्री बन जाए और बहुत सारा पैसा इकट्ठा करेगा। परंतु जब उसने देखा कि वे यीशु को क्रूस पर ठोक रहे हैं, तब वो बहुत निराश हुआ और जैसी भविष्यवाणी है उसने वो सिक्के मंदिर में फेंक दिए और कहा, मैंने निर्दोष के लहू को पकड़वा दिया। वो बाहर गया और उसने फांसी लगा ली। अब क्योंकि ये पैसा लहू बहाने के लिए दिया गया था और नियम अनुसार ये पैसा मंदिर के कोष में नहीं डाला जा सकता था, अतः उन्होंने कुमार की जमीन खरीद ली कि लावारिस लाशों को वहां गाड़ा जाए। जकरिया की ये भविष्यवाणी भी पूरी हो गई। अब आप ये कहेंगे कि भविष्यवाणी यीशु से 500 वर्ष पूर्व की है। अनेक लोगों को 30 चांदी के सिक्कों में बेचा गया होगा। महायाजक के हाथों द्वारा भी संभव है ऐसा किया गया हो। यह भी हो सकता है कि कातिल ने सुपारी लौट दी हो, परंतु क्या यह भी संभव है कि कुमार की जमीन हर समय खरीदी गई? ये सब तो एक ही मनुष्य के संदर्भ में हुआ और वो था यीशु नासरी। ध्यान दीजिए कि यहोवा क्या कहता है, ये क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। जी हां, हम भी आज अपने यीशु मसीह को बड़ी ही नीच कीमत पर बेच देते हैं। व्यभिचार और शारीरिक लालसाओं में यीशु को बेच देते हैं, अपनी आत्मा को बेच देते हैं। यीशु ने कहा, अपने प्राणों के लिए बदले में मनुष्य क्या दे सकता है। मैं जब देखता हूं कि मनुष्य कितने सस्ते में बिक जाता है तो मैं अचंभा करता हूं। वो तुच्छ कीमत पर अपने प्रभु से संबंध तोड़ देता है। इस संदर्भ में मुझे ध्यान आता है कि स्पेन के लोग आदिवासियों को माला के कांच के चमकते मोती देकर और उनसे सोना ले लेते हैं। शैतान भी ऐसा ही करता है। वो इन नकली नाशमान वस्तुओं को लटकाकर मनुष्य को ललचाता है और कहता है, देख कैसी चमक दमक है इसमें, देख कैसा आनंद है इसमें, अरे बड़ा मजा आएगा, और मनुष्य बिक जाता है। वो अपने प्रभु को बेच देता है। प्रभु हंसता है और कहता है, ये क्या ही भारी दाम है जो तुमने मेरा ठहराया है। अब दूसरी लाठी का नाम था एकता। यहूदा और यरूशलेम की अर्थात यहूदियों परमेश्वर के साथ एकता भी तोड़ी गई, क्योंकि यहूदियों ने अनुग्रह की लाठी को अर्थात यीशु को तोड़ दिया था, उसे बेच दिया था, उसका परित्याग किया था। यहूदा और इसराइल में जो भाइयों का सा संबंध या उसे परमेश्वर ने समाप्त कर दिया। जकरिया अध्याय 11 पद 15 में जकरिया क्रिस्त विरोधी के आगमन की भविष्यवाणी करता है, जिसके आरंभ में वे उपासना तक करेंगे। यीशु ने कहा था, मैं अपने पिता के नाम में आया तो तुमने मुझे ग्रहण नहीं किया, यदि और कोई अपने नाम में आएगा तो तुम उसे ग्रहण कर लोगे। जकरिया अध्याय 11 पद 15। तब यहोवा ने मुझसे कहा, अब तू मूढ़ चरवाहे के हथियार ले ले। उन्होंने सच्चे चरवाहा का परित्याग किया था। यीशु ने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूं, परंतु उसका परित्याग किया गया, इसलिए यहोवा ने कहा। जकरिया अध्याय 11 पद 16 और 17। क्योंकि मैं इस देश में एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो खोई हुई को ना ढूंढेगा ना तितर बितर को इकट्ठी करेगा, ना घायलों को चंगा करेगा, ना तो भली चंगी है उनका पालन पोषण करेगा, वरन मोटियों का मांस खाएगा और उनके खुरों को फाड़ डालेगा। हाय उस निकम्मे चरवाहे पर जो भेड़ बकरियों को छोड़ जाता है, उसकी बाह और दहनी आंख दोनों पर तलवार लगेगी, तब उसकी बाह सूख जाएगी और उसकी दहनी आंख फूट जाएगी। ये क्रिस्त विरोधी के लिए भविष्यवाणी है, इसराइल उसे ग्रहण करेगा। आज इसराइल क्रिस्त विरोधी के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। अनेक रबी है जो मसीह के आगमन को बहुत ही निकट मानते हैं। आप उनसे पूछिए, आप मसीहा को कैसे पहचानेंगे? उनका उत्तर होगा, वो मंदिर बनवाएगा और मंदिर निर्माण में हमारी सहायता करेगा। अनेक रूढ़िवादी यहूदी विशेष करके मैं शरीम के ये मानते हैं कि मसीहा के आगमन तक इसराइल राष्ट्र का अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए। वे यहूदी विरोधी है, वे उस मसीहा की प्रतीक्षा में हैं जो मंदिर का निर्माण कराएगा। बाइबल भी यही कहती है कि क्रिस्त विरोधी यही काम करेगा। वो इसराइल के साथ वाचा तो बांधेगा, परंतु जिस दिन वो मंदिर में खड़ा होकर स्वयं को परमेश्वर कहेगा, उस दिन वो अपनी वाचा तोड़ देगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में हमें इस विषय में अधिक जानकारी मिलती है। क्रिस्त विरोधी जब आएगा तब वो महान और अद्भुत चमत्कार दिखाएगा। वो पैसों का जादूगर होगा, वो महान कूटनीतिज्ञ होगा, वो विश्वव्यापी समस्याओं का शांतिपूर्वक समाधान खोजेगा। आज यूरोप में महान शांति अभियान चल रहा है और वो बढ़ता जा रहा है और वो अधिक बढ़ेगा। संपूर्ण यूरोप में प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं कहीं तो लाखों लोग इस शांति अभियान में एकत्र होते हैं। आज पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा को इस अभियान से एक महान खतरा है। क्रिस्त विरोधी इस शांति अभियान के सिर पर सवार होकर आएगा। वो शांति की बातें शहद टपकती जीप से करेगा और वो विश्वव्यापी शांति का समाधान खोजेगा और आर्थिक संकटों का हल निकालेगा। ध्यान दीजिए कि हिटलर के उदय का मुख्य कारण था वहां की आर्थिक अस्थिरता। जब किसी देश की आर्थिक स्थिति इतना गिर जाए कि सरकार लाचार हो जाए, तब जनता किसी को भी जो उनको संभाल ले अपना नेता बना लेती है। हिटलर के युग में जो आर्थिक संकट था, वही संकट आज फिर से यूरोप पर छा रहा है और शांति की लालसा क्रिस्त विरोधी के उद्धार की योजना और मुकुट होंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 के अनुसार क्रिस्त विरोधी पर प्राण घातक हमला किया जाएगा, परंतु वो चमत्कारी रूप से बच जाएगा। एहस्केल कहता है कि इस हमले से उसकी दहनी आंख फूट जाएगी और उसकी एक भुजा निष्क्रिय हो जाएगी। आप कहेंगे, ये तो अच्छा होगा क्योंकि हम उसे पहचान लेंगे। उसे अवश्य पहचान लीजिएगा। जब तक पवित्र आत्मा कलीसिया में उपस्थित है, वो बाधक सिद्ध होगा, परंतु उसके प्रस्थान करते ही विनाश का पुत्र प्रकट होगा, जो झूठ छल और चमत्कारों को अपने साथ लाएगा। कलीसिया क्रिस्त विरोधी के आगमन तक इस पृथ्वी पर नहीं रहेगी। यीशु के आगमन की अपेक्षा क्रिस्त विरोधी की पहचान और चिन्हों को खोजना तथा उसके आगमन की प्रतीक्षा करना शैतान की युक्ति में फंसे मनुष्य का काम है। यीशु ने कहा, लूका अध्याय 21 पद 28, जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। जकरिया ने क्रिस्त विरोधी के आगमन की बड़ी रोचक भविष्यवाणी दी है।